ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बुल्कैया के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली ब्रुनेई यात्रा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने पर यह यात्रा हो रही है। प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हितों के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि ब्रुनेई और सिंगापुर की उनकी यात्रा से दोनों देशों के साथ और आसियान क्षेत्र में भारत की साझेदारी और मजबूत होगी। दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के मामले में महत्वपूर्ण साझेदार हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI विमानों के लिए 240 एयरो इंजन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सभी करों सहित 26,000 करोड़ रुपए की लागत भारतीय श्रेणी में क्रय के वर्ग में स्वीकृति दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन एयरो इंजनों को सौंपने का काम 1 वर्ष बाद शुरू होगा और इसे 8 वर्षो में पूरा किया जाएगा। ये इंजन 54% स्वदेशी सामग्री से बने हैं और इनके कुछ प्रमुख घटकों को देश में ही तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को भी मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष एग्री श्योर और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। वे कृषि अवसंरचना निधि AIF उत्कृष्टता पुरस्कार का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। 3 वर्ष के लिए बनाए गए इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा। आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 सदस्य होंगे। विधि मामलों के विभाग के सचिव और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव आयोग के पदेन सदस्य होंगे। इसमें 5 अंशकालिक सदस्य भी हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक में से जो भी अवधि पहले पूरी हो रही हो उस समय तक पूर्णकालिक आधार पर कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगी। वे उच्च सदन की आवश्यकता और महत्व पर एक पुस्तक का विमोचन भी करेंगी। राष्ट्रपति बेस्ट मेंबर ऑफ हाउस और बेस्ट स्पीच पाने वालों को सम्मानित करेंगी। इससे पहले आज सुबह राष्ट्रपति पुणे में सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने कल मेडिकल प्रतिष्ठान में वित्तीय अनियमितताओं में असंलिप्तता को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय एजेंसी उनसे पिछले महीने महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या तथा अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ कर रही थी। भारतीय वायुसेना का एक MiG-29 लड़ाकू विमान कल रात राजस्थान के बाड़मेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना ने कहा कि लड़ाकू विमान में रात्रि प्रशिक्षण मिशन के दौरान तकनीकी खराबी आई जिसके बाद पायलट को विमान से निकलना पड़ा। पायलट सुरक्षित है और जानमाल के किसी नुकसान की सूचना नहीं है। इस मामले में वायुसेना की ओर से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर यातायात को बाधा रहित बनाने के लिए GIS आधारित सॉफ्टवेयर पर लाइव निगरानी के लिए लगभग 100 टोल प्लाजा की पहचान की है। टोल प्लाजा के नाम और स्थान के अलावा वेब सॉफ्टवेयर जिन विवरणों को साझा करेगा उनमें वाहनों की कतार की लंबाई, कुल प्रतीक्षा समय और टोल प्लाजा पर वाहन की गति की लाइव स्थिति शामिल होगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में गुजरात में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज सूरत और भरूच जिले के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर आंध्र प्रदेश में NTR और गुंटूर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।